نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. یہاں پر اس حدیث کے اوپر آپ کو نواقض وضو یا اگر نواقض کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ہوں کہ وہ چیزیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس پالنے کے بعد لوگوں کے نزدیک صرف پیشاب اور پخانے کے راستے کچھ نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے. جیسے آپ لوگ جانتے ہوں گے نا کہ ہمارے میں بہت ساری باتیں مشہور ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ بہت ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غلط چیز دیکھ لیے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا اپنے ہی بچوں کے اگر آپ نے ڈائپر چینج کروایا اس سے بھی وضو ٹوٹ گیا. تو اس سے ہم کو معلوم ہے کہ حدیث میں کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ نواقض وضو کون کون سے ہیں, یعنی حدیث میں کن چیزوں سے وضو ٹوٹنے کا کہا گیا ہے, اگر ہم کو یاد کر لیں تو پھر الحمدللہ ہمارے کوئی بھی بات پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم کو سزائے حاجت سے فارغ ہو کر آئے تو تم پانی نہ پاؤ تو تیمم کر لو. عطا کہتے ہیں, عطا یہ بہت بڑے محدث بھی گزرے ہیں اور مفسر. تو عطا کہتے ہیں کہ پچھلے حصے سے یعنی دبر سے یا اگلے حصے سے یعنی سامنے سے کوئی کیڑا یا جون کے قسم کا کوئی جانور نکلتے چاہیے کہ وضو لوٹائے. اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب آدمی نماز میں ہنس پڑے تو نماز لوٹائے. جابر بن عبداللہ کون سی صحابی کا ہی ذکر ہے یہاں پر. تو امام بخاری یہاں پر اصل میں کچھ اسکالر کچھ جو محدثین تھے کچھ مفسرین تھے اور کچھ صحابی ان کا قول لائے ہیں پہلے کہ بعد میں حدیث بیان کی. تو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب آدمی نماز میں ہنس پڑے تو نماز لوٹائے اور وضو نہ لوٹائے. اور حسن بصری نے کہا کہ جس شخص نے وضو کے بعد اپنے بال اتروائے یا ناخن کٹوائے یا موزے اتار ڈالے اس پر وضو نہیں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وضو حدث کے سوا, حدث اصل میں کوئی بھی ناپاکی کو کہتے ہیں, حدث کے سوا کسی اور چیز سے فرض نہیں ہے. اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذات الرقا کی لڑائی میں تشریف فرما تھے. ایک شخص کے تیر مارا گیا, یعنی ایک شخص کو تیر لگا اس کے جسم سے بہت خون بہا, مگر اس نے پھر بھی رکوع اور سجدہ کیا اور نماز پوری کر لی. جیسے ہمارے یہاں پر مشہور ہے نا کہ خون نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے, تو اس نے نماز پوری کر لی. اور حسن بصری نے کہا کہ مسلمان ہمیشہ اپنے زخموں کے باوجود نماز پڑھا کرتے تھے. اور تاؤس, یہ تاؤس بن کیسان یہ بھی بہت مشہور محدث ہیں, محمد بن علی الحجاب کے نزدیک خون نکلنے سے وضو واجب نہیں ہوتا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی ایک کھنسی کو دبایا تو اس سے خون نکلا, مگر آپ نے دوبارہ وضو نہیں کیا. اور ہم نے ابھی اوپر اس خون پھونکا مگر وہ اپنی نماز پڑھتے رہے ان کے منہ سے خون نکلا تھا. اور ابن عمر اور حسن رضی اللہ عنہ پچھنے لگوانے والے کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس جگہ پچھنے لگے ہیں اس کو دھو لے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں. تو اب دیکھیے کتنے لوگوں کے اقوال ہیں, بہت سارے لوگوں کے اقوال ہیں, صحابہ کرام کے بھی اقوال ہیں اور جو بہت مشہور محدثین گزرے تھے ان کے یہاں پر اقوال سے ثابت کیا گیا ہے کہ خون نکلنے سے یا پھر اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں زخم تھا وہ پھوٹ جانے سے اس سے جو ہے آپ کے وضو نہیں ٹوٹے گا. اور ہنسنے سے نماز کا تو ذکر ہم کو ملتا ہے کہ ایک حدیث ہے جس میں ہنسنے سے کہا گیا تھا کہ نماز دوبارہ دہرا لے, لیکن وضو ٹوٹنے کا ذکر نہیں گیا. جبکہ ہمارے یہاں مشہور ہے زیادہ ہنسنے سے کیا کہتے ہیں وضو ٹوٹ گیا وضو کرو. اتنی دفعہ یہ معاملہ پیش آ گیا ہے کہ جب جیسے اگر کوئی زخم تھوڑا سا لگ جاتا ہے یا کوئی پھنسی پھوٹ گئی یا خون نکلا یا نقصی جو ہم ناک سے اگر خون پھوٹ جاتا نکل جاتا ہے تو اس طرح سے بھی ہمارے یہاں کیا کہا جاتا ہے وضو کرنا ضروری ہے. اور سب سے بڑھ کر تو ہمارے سامنے مثال ہے عمر رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو اس کے باوجود بھی نماز پڑھاتے رہے, لیکن جب وہ گر گئے تو اس کے بعد پھر عبدالرحمٰن بن عوف آ گیا ہے اور انہوں نے بھی نماز پڑھائی. تو اس کا مطلب ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا خون نکلنے سے جسم سے اگر خون نکل رہا تو. کس بنا پر وضو ٹوٹتا ہے؟ دبر, یعنی سامنے یا پیچھے سے کوئی چیز اگر نکلے کوئی چیز پھاڑے تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے, ہم سے آدم بن ابی عیاض نے بیان کیا, انہوں نے کہا کہ ہم سے ابن ابی زید نے بیان کیا, انہوں نے کہا کہ سعید المقبری نے بیان کیا, وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اس وقت تک نمازی میں رہتا ہے جب تک وہ مسجد میں نماز کا انتظار کرتا ہے تا وقت کہ وہ حدث نہ کرے. ایک ادنی آدمی نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ حدث کیا چیز ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہوا جو پیچھے سے خارج ہو, جسے اس میں عام میں گوز مارنا کہتے ہیں, یہ ہم سبھی جانتے ہوا کا خارج ہونا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہاں پر اس حدیث سے امام بخاری ثابت کرنا چاہ رہے ہیں, جیسے کہ انہوں نے عنوان بھی دیا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آگے اور پیچھے کی جگہ سے جب تک کہ کوئی چیز نہ نکلے اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا, وضو برقرار رہے گا. ٹھیک ہے, ابھی ہم بعد میں دیکھیں کہ کون سی چیز نکلنے سے वजू बरकरार रह सकता है या आप एक ही वजू से कई नमाजें पढ़ सकते हैं और कौन सी चीजों से बरकरार नहीं रहता। तो ये तो हमको पता चल गया कि अगर कोई भी चीज अगर सामने और पीछे से निकले नहीं, अगर आप रफ हाजत से आए हैं तो उस सूरत में आपको क्या करना पड़ेगा, वजू करना पड़ेगा, क्योंकि हम कुरान की आयत से पहले वो दलील आए। कुरान की आयत में दलील क्या है कि कोई कजाए हाजत से फारिग होकर आए, ठीक है ना, गायब का लफ्ज आता है उसमें ना, कि अगर तुम उससे फारिग होकर आए हो तो उस सूरत में वजू टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये पहली चीज हुई। हमसे अब्दुल वली ने बयान किया था, हमसे अपने वो जहरी थे, वो अब्बास बिन तमीम थे, वो अपने चचा थे, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया कि नमाजी नमाज तो उस वक्त तक ना फिरे जब तक रीह की आवाज न सुने या सुकून ना पाए। इससे एक और बात पता चलती है कि हवा अगर किसी किसी को आदत होती है, हल्की हल्की हवा खारिज होती रहती है, किसी को कुछ बीमारी हो जाती है, किसी को पेट की खराबी होती है, तो अगर हल्की हल्की आवाज निकलती रहे और उससे स्मेल ना आए जब तक, तो तब तक उसको वजू नहीं टूटेगा। यहाँ पर हदीस से क्या पता चलता है कि जब तक कि हवा खारिज ना हो और बदबू ना, यानी कुछ स्मेल ना चले, इससे पता चलता है कि स्मेल के साथ अगर किसी को हवा खारिज हुई तो उस सूरत में वजू टूटेगा, अदरवाइज क्या वो वजू बरकरार रहेगा। और जिनको अगर ऐसी आदत है, जिनको बीमारी की तरह ऐसी आदत है, उनका तो बिल्कुल भी वजू नहीं टूटेगा। और दूसरों को भी जब तक कि आवाज ना सुन ले और दूसरा क्या है बदबू ना सुन ले तो उस सूरत में है, तब ये इंसान खुद ही महसूस कर सकता है ज्यादा, ये किसी दूसरों को नहीं पता चलेगा। और ये हमारा और अल्लाह तआला का मामला है कि जिसको बीमारी नहीं थी और कभी कभार ऐसा होता है, उस सूरत में उसको क्या करना पड़ेगा, बेहतर है वजू कर ले जब तक कि पूरी तरह आवाज न सुने और स्मेल न सुने। और अगर आवाज भी सुननी हो सकता है स्मेल ना आई हो, उस सूरत में अगर आवाज महसूस कर ले, आवाज सुन ले, उस सूरत में वो हटकर वजू करने चला जाएगा, जो कभी कभी जिनको होता है। लेकिन जिनको हमेशा से ऐसी आदत है, पेट की खराबी है, गैसेस वगैरह की बहुत ज्यादा शिकायत है और उनकी हल्की हल्की हवा खारिज होती रहती है, तो उन लोगों के लिए ये मसला नहीं, वो लोग क्या करेंगे, वो उसी वजू से नमाज पढ़ेंगे और यानी उनका वजू नहीं टूटेगा सब। और उससे उनको कोई दिल में शक में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अल्लाह के रसूल ने शक से नहीं कर टूटता है वजू, यानी शक अगर आपको खुद ही शक हो रहा है कि हवा खारिज हुई तो उस तरह से वजू नहीं टूटेगा, लेकिन जब आप आवाज सुन लें और साथ में स्मेल नहीं रहे तो नो डाउट आपको वजू करना पड़ेगा। लेकिन जिन लोगों की आदत ही है, जिनको बीमारी है, उस सूरत में उनका वजू नहीं टूटेगा, वो एक वजू से पूरी वो नमाज पढ़ सकते। तो खुलासा ये है कि वजू टूटने का यकीन ना हो जब तक के, तो महज सुबह पर वजू नहीं टूटा जा सकता। लिखने आप लोग, जब तक वजू टूटने का यकीन ना हो तो उस वक्त तक तो बिला वजह शक के बिना पर वजू ना तोड़े। कुछ लोगों को शक की आदत हो जाती है ना, तो उस सूरत में वजू नहीं टूटेगा। ठीक, अगली हदीस देख लीजिए, तीनों हदीसें देखकर हम लोग उसका खुलासा लिखेंगे। हमसे कुतैबा ने बयान किया था, हमसे जरीन ने आमिश के वास्ते से बयान किया, वो मंजर से, वो अबू यादा सौरी से, वो मोहम्मद बिन हनफिया से नकल करते हैं कि अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मैं ऐसा आदमी था जिसको सीनान यानी मर्जी की शिकायत थी, मगर अल्लाह के रसूल से उनसे पूछने में मुझे शर्म आती थी, तो मैंने इब्न अस्सद को हुक्म दिया, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आपने सुना कि उसमें वजू करना पड़ते, इस रिवायत को शोभा ने भी आमिश की रिवायत की, दूसरी रिवायत भी हमको मिलती है हदीस की, ये रिवायतें मिलती है। इसमें अली रजी अल्लाह अन्हु के दामाद थे अल्लाह के रसूल के, तो वो सवाल पूछने लगाते हैं कि उनको मर्जी बहुत निकलती थी, तो उस बिना पर जो भाई किस्म का होता है आप वो जानते होंगे, तो वो उसके बिना पर उन्होंने पूछते हुए शर्म महसूस की, उन्होंने किसी और से पूछने लगाया, तब अल्लाह के रसूल ने कहा कि उसके लिए वजू करना जरूरी है। ठीक है, तो अगर जिसको इसकी शिकायत है तो वो क्या कर ले, हर नमाज के लिए वजू कर ले। हमसे सात दिन हफ्त से बयान किया, उन्होंने कहा हमसे शेबान ने यहा के वास्ते से नकल किया, वो अता भी साथ से नकल करते हैं, उन्हें जैद बिन खालिद ने खबर दी, उन्होंने उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि अगर कोई शख्स सोहबत करे और मदीना निकले तो मैं कि वजू करे जिस तरह नमाज के लिए वजू करता है और अपने अज़ू को धोए, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु कहते कि ये मेरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। जैद बिन खालिद कहते हैं फिर मैंने उसके बारे में अली ज़ुबैर तल्हा और इब्न उबैकाब रज़ी अल्लाह अन्हु से दरियाफ़्त किया, सब ने उस शख्स के बारे में यही हुक्म दिया, लेकिन इस हदीस के पास आप लिख लें नीचे ये हदीस मनसूख है, ये हदीस मनसूख है, ये पहली की रिवायत है अल्लाह के रसूल से कि हम गुस्ल में बाद गुस्ल में हम पढ़ेंगे कि जिसकी भी मनी निकले, चाहे मतलब इन्हें इंटरकोर्स हुआ हो या ना हो, शोहर बीवी का ताल्लुक हुआ हो ना हो, और अगर शोहर बीवी का ताल्लुक हो गया हो उसके बावजूद अगर अंजाम ना हुआ हो तब भी क्या है गुस्ल जरूरी है। तो ये पहला हुक्म था, तो ये हदीस कौन सी हुई, मनसूख हुई। अब हम कौन सी हदीस मानेंगे जो नासिख हुई, यहाँ पर इस हदीस में क्या बताया जा रहा है कि अगर मनी निकले तो उसके बाद क्या करें, तो बताया गया कि वजू करें, लेकिन अब तक पूरी उम्मत का इजमा है इस पर कि यह हदीस मनसूख है और अब अंजाम की सूरत में क्या होगा, गुस्ल लाजिम होगा, लेकिन मजी में नहीं है, किस में है, मनी में है। ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، کہا ہمیں نظر نے خبر دی، کہا ہم کو شعبہ نے حکم کے واسطے سے بتایا، وہ ذکوان سے، وہ ابو صالح سے، وہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کو بلایا، وہ آئے تو ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید ہم نے تمہیں جلدی میں ڈال دیا، انہوں نے کہا جی ہاں، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی جلدی کا کام آ پڑے یا تمہیں انصار نہ ہو تو تم پر وضو ہے، غسل ضروری نہیں۔ اس حدیث کو نظر کے ساتھ وہب نے بھی شعبہ سے روایت کی، لیکن غندر اور یحیی نے اس میں شعبہ سے وضو کا ذکر نہیں کیا۔ ایکچولی یہاں امام بخاری یہ دونوں احادیث کو اس لیے لائے ہیں کیونکہ ہے تو اوتھینٹک نریشن، بعد میں جب کہیں اور سے پتہ چلے اور پھر پتہ چلے کہ اچھا یہ تو حدیث میں پتہ چل رہا ہے کہ وضو کرنا بہت ضروری ہے، نہانا یا غسل کرنا ضروری نہیں ہے، تو بعد میں کہیں اور سے سننے کو ملے بہتر ہے کہ میں نے اس کو پہلے باب وضو میں اس کو نقل کر لیا کہ اس سے بھی پاکی ہو جاتی ہے، لیکن یہ پہلا حکم تھا۔ اب اس کی وجہ سے وہ باب جو غسل ہم پڑھیں گے تو غسل والے باب میں ہم کو پتہ چلے گا کہ نہیں۔ اب جب بھی اگر اس طرح سے کوئی معاملہ ہو ہسبینڈ اینڈ وائف کا یا ویسے بھی احتلام اگر ہو جائے تو اس صورت میں کیا ہے، غسل واجب ہے، غسل کرنا لازم ہے۔ تو یہاں پر اس میں لکھ لیجیے آپ، اس میں جو اس کا دبے جواب کہا گیا ہے تمام علماء کا جی منسوخ ہے، امت کا اجماع ہے کہ شوہر بیوی کے تعلق سے غسل واجب ہو جاتا ہے چاہے منی نکلے یا نہ نکلے۔ امت کا اجماع ہے کہ شوہر بیوی کے تعلق سے غسل واجب ہو جاتا ہے چاہے منی نکلے یا نہ نکلے۔ پھر اوپر جو ہم نے وضو کی جو حدیث پڑھی جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جو نواقض وضو میں ہم نے پہلا وہ پڑھا، اس میں یہ ابن جوزی کا قول ہے، وہ بھی لکھیں آپ لوگ، اسلام کے احکامات، اسلام کے احکامات، انسان جگہ، انسان جگہ وقت کی ضرورت کے لحاظ سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اسلام کے احکامات انسان جگہ وقت کی ضرورت کے لحاظ سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اسی لیے فتاوی میں فرق ہے۔ جیسے آپ کو اس کی مثال دی تھی یاد ہے کہ فتووں میں فرق ہونا دین پر کوئی اثر نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو عقائد اور فرائض ہیں ہمارے وہ کیا ہوں گے، وہ فکس ہیں، وہ ایک ہی رہیں۔ کوئی مثال بتا سکتا؟ ابن عباس کے پاس صبح ایک شخص آیا جو اس طرح سے اس کے سوال میں تھا کہ کیا یہ معاف ہو سکتا ہے اگر کسی سے غلطی سے قتل ہو جائے، تو انہوں نے کیا کہا، ہو سکتا ہے۔ اور شام میں ایک شخص نے پوچھا کہ اگر ایک شخص قتل کرے تو کیا، تو وہ کس نے پوچھا تھا سوال، وہ اپنے ابھی قتل کرنے والا تھا، وہ جواب کے لیے پوچھ رہا تھا، لیکن اس کو جواب مل گیا۔ صبح جب شخص نے اس کا قتل ہو چکا تھا وہ نادم اور شرمندہ تھا۔ آپ دیکھیے اسی لیے جو ہے یہی ہمارے دین کی خوبصورتی ہے، ماشاء اللہ جو فک ہے، اس لیے ہمارا دین قیامت تک الحمد للہ یعنی یہ صحیح سلامت رہے گا، زندہ رہے گا۔ دور سے جو مذاہب ہم جاتے ہیں تو اپنی موت آپ مر چکے، چاہے آپ کرسچینٹی کو دیکھیں اس میں کیا تھا، رہبانی اختیار کر لی گئی، یا پھر بالکل سب کو کیا تھا کہ جو پہلے ہو چکا بس وہ ہو چکا۔ تو اب جب جیسے جیسے زمانے نئے نئے حالات آتے رہیں گے تو اس لحاظ سے ویسے معاملات آتے جائیں گے، تو نئے نئے معاملات آئیں گے تو کیا کرنا ہوگا، اس حساب سے اس کا حل بھی ڈھونڈنا ہوگا۔ پھر اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا رہے گا، اور ہمارے دین پر کوئی جمود نہیں جاری ہوا الحمد للہ۔ جو لوگ پرانے فتاوی کو لے کر کہتے کہ بس وہ جو ہمارے پرانے علماء کی فتاوی تھے بس اسی کو ہم آنکھیں بند کر کے فالو کریں گے، تو وہ پھر وہی جمود جاری ہو جاتا ہے، وہ موت جاری ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمارا دین الحمد للہ یہ قیامت تک رہنے والے لحاظ سے اجتہاد کا دروازہ کھلا رہے گا۔ تو یہ فکر میں اصول آپ ہمیشہ یاد ہے، جس سے آپ کو بہت آسانی ہوگی آگے کسی کا سوال کا جواب دینے میں، اور خود اپنے خود کے الحمد للہ اطمینان کے لیے کہ حالات واقعات اور انسان کو دیکھ کر جو ہے بعض اوقات جو فتاوی ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں، کہ ہم اس کو مد نظر رکھ کے دیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو دو بات کی جو دونوں حدیثیں ہم نے پڑھی ہے کیا ہے، منسوخ ہیں۔ اور نواقض وضو میں پھر ہم نے کیا پڑھا کہ اگر کسی کے ناک سے خون نکلتا ہے یا منہ سے خون نکلتا ہے، جسم سے خون نکلتا ہے، تو کیا اس صورت میں وضو ٹوٹے گا، نہیں ٹوٹے گا، بلکہ ہمارے یہ بھی مشہور ہے کہ الٹی سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے نا۔ تو اگر الٹی ہونے کے بعد آپ کو اگر منہ میں جیسے مزہ نہ ہو تو آپ کلی کرنے میں لگے، لیکن ہم نے اس میں پڑھا کہ جب تک سبیلین سے یعنی یا تو ہوا نہ خارج ہو یا آپ رب حاجت سے نہ آئیں، یعنی حاجت سے نہ فارغ ہوں آپ، اس صورت میں یعنی اس کے علاوہ پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ بات آپ لکھ لیں جی ہاں، جیسے الٹی آ جائے تو ہاں، تو اگر الٹی کر کے آیا آپ تو پھر کلی کر کے دوبارہ ہم اسے جوائن کریں جی، بالکل کر سکتے، کیونکہ الٹ کہیں پر بھی نہیں لکھا کہ الٹی سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر آپ اپنے شک کو دور کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کرنا چاہیں تو کوئی بات نہیں کریں، لیکن ایکچولی الٹی سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے، خون نکلنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے، زخم لگ کے آپ کو نماز میں اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے، یا آپ نے ایک نماز پڑھ لی تھی اس کے بعد آپ کو ہنسی آ گئی، آپ نے کہیں کہا لگا کر ہنس لیا، تب بھی اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں نماز بھلے ہی دہرانی پڑے، لیکن نماز میں اگر ہنسی آ گئی लेकिन वुजू पर लेके रखना चाहिए। हाँ उल्टी से रोजा छूट जाता है, उल्टी से रोजा टूटता नहीं होता है, इसलिए आपके जिस्म में हाथ डाल के जान पर करके आएगी। बोले तो प्रेगनेंट वुमेन है उसको तो दिन भर उल्टियाँ होती रहती है, तो क्या वो रोजा ही ना रखे? कितने लोग रोजा रखते हैं मतलब उस हालत में, तो उससे रोजा नहीं टूटा ना ही नमाज। उसमें जैसे अगर आप अस्थमा के मरीज हों या आपको ऐसा कोई इंजेक्शन दिया गया हो कि जिससे आपको ताकत ना मिलती है, तो उस वजह से भी रोजा नहीं टूटेगा। ये यहाँ का भी फतवा है, आपको इंजेक्शन दिया गया और उस इंजेक्शन में कोई ताकत की दवा नहीं, और वो ऐसा इंजेक्शन है कि जिससे जाकर आपके रगों को कोई तकलीफ नहीं मिलेगी, बल्कि एक बीमारी के लिए दिया गया, तो उसके दर में आज के जो दौर में स्कॉलर्स का मेजोरिटी ऑफ स्कॉलर्स का कहना है कि उसके दर में भी रोजा नहीं टूटेगा। इवन जो अस्थमा के मरीज हैं, दमे के मरीज हैं, जो इनहेल करते हो जो अपनी दवा को, जो सेंस फॉर्म आता है या बहुत खांसी का दौरा पड़ता रहता, तो वो जो रोजे की हालत में भी वो ले सकते, इनहेल कर सकते। तो मैंने हालत के लिहाज से क्या होगा वो बदल जाएगा, ठीक है। एक हदीस छोड़कर उसकी अगली हदीस देखिए। बाब, बेवजू होने की हालत में तिलावत का कुरान और दूसरे उगुल जायज है, उसका बयान। बाब, बेवजू होने की हालत में तिलावत का कुरान और दूसरे उगुल जायज है, उनका बयान। मंसूर ने इब्राहिम से नकल किया कि हमाम गुस्ल खाने में तिलावत का कुरान में कुछ हर्ज नहीं, इस तरह बगैर वजू खत लिखने में भी कुछ हर्ज नहीं। और हमाम ने इब्राहिम से नकल किया कि अगर हमाम वाले आदमी के बदन पर तहबन हो तो उसको सलाम करो, और अगर तहबन ना हो तो सलामत करो। ये आप आज के बाद वॉशरूम का तस्वर न करें। उस जमाने में जो बड़े बड़े शहर में जैसे इराक, कूफा में, बसरा में, उन लोगों ने जो है सिर्फ गुस्ल खाने बनवाए थे, और वो गुस्ल खाने में कोई गंदगी नहीं रहती, उसका यहाँ पर जिक्र किया गया है। और इसमें भी जो है एहतियात है कि बदन पर कपड़ा हो तो उस सूरत में सलाम करो, तो उससे दलील ली गई कि आपका कम से कम सत्र कम्प्लीट होना चाहिए, उतना सत्र कम्प्लीट हो जो कि जो मिनिमम होता है, उस सूरत में आप कुरान की तिलावत कर सकते हैं। हमसे इस्माइल ने बयान किया, कहा मुझसे इमाम मालिक ने मखदूमा बिन सुलेमान के वास्ते से नकल किया, वो कुरैद इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के आज़ाद कदा गुलाम से नकल करते हैं कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें खबर दी कि उन्होंने इकरार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहर और अपनी खाला मैमूना के यहाँ घर में गुजारी। वो फरमाते कि मैं तकी के अर्ज यानी जो चौड़ाई होती है उसके तरफ लेट गया, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी अहलिया ने मामूल के मुताबिक तकी की लंबाई पर सरक कर आराम फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते रहे, और जब आधी रात हो गई या उससे कुछ पहले या उसके कुछ बाद आप बेदार हुए, और अपने हाथों से अपनी नींद को दूर करने के लिए आंखें मलने लगे। फिर आपने सूरह आले इमरान की आखिरी 10 आयतें पढ़ी। फिर एक मुश्किले के पास से जो छत में लटका हुआ था आप खड़े हो गए और उससे वुजू किया, खूब अच्छी तरह से खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने भी खड़े होकर उसी तरह किया जिस तरह आपने वुजू किया था, फिर जाकर मैं भी आपके पहले मुबारक में खड़ा हो गया। आपने अपना दाहिना हाथ मेरे सर पर रखा और मेरा दायां कान पकड़ कर उसे मरोड़ने लगे। फिर आपने दो रकातें पढ़ी, उसके बाद फिर दो रकातें पढ़ी, फिर दो रकातें पढ़ी, फिर दो रकातें पढ़ी, फिर दो रकातें, फिर दो रकातें, फिर उसके बाद आपने वितर पढ़ा और लेट गए। फिर जब मौसिन आपके पास आए तो आपने उठकर दो रकात मामूली तौर पर पढ़ी, तशरीफ लाकर सुबह की नमाज पढ़ी। एक्चुअली कान मरोड़ने का मतलब ये कि कान मरोड़ कर आप पीछे से उनको दाएं तरफ लाए। यहाँ पर हदीस का थोड़ा सा हिस्सा बयान किया गया है, दूसरी जगह हदीस का पूरा हिस्सा बयान किया गया है। उसमें असल में वो ये वाली हदीस आई है जमात में जो मुख्तदी है या अगर एक शख्स तो वो कहाँ खड़ा रहे, तो इसी एक हदीस को इमाम बुखारी कई जगह लाए हैं। हदीस से बहुत सारी चीजें साबित करना चाहते हैं। यहाँ पर वो इसलिए लाए हैं कि बगैर वुज़ू के कुरान पढ़ा जा सकता है, और चूंकि अब्दुल्ला बिन अब्बास 11 साल के ये पैदा हुए थे चुने शेबे निकाले थे, तो उस लिहाज से देखा जाए तो जब यहाँ मदीना आए फतेह मक्का के वक्त मदीना आए थे, उसके बाद या उससे थोड़ा पहले, तो उस लिहाज से देखा जाए तो 11 साल की एज लगती है, तो 11 साल के थे और इसलिए अपनी खाला के यहाँ गए थे क्योंकि वो उनके महरम थे, तो लिहाजा उनके यहाँ इसलिए उन्होंने रात गुजारी, क्योंकि ये किसी के जहन में ख्याल ना आए कि वो उनके घर में क्यों गए थे, उसके साथ वहां पर क्यों सोए थे। तो चूंकि उनके भांजे थे, और ये भी आप देखिए कितना बड़ा उम्मत पर अलहमदुल्ला ये अल्लाह तआला का फजल है कि अगर वो इस तरह से रात ना गुजारते तो आपकी तहज्जुद का उतना और बेहतर तरीके से पता ना चलता। तो वो कहते हैं कि जब मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप की वो हदीस बयान करते वक्त कितनी जज़ियात के साथ हदीस बयान कर रहे हैं कि उन्होंने सब कुछ बता दिया कि वो कैसे उन्होंने देखा, कैसे वो सोए थे, और फिर जब अल्लाह के रसूल उठे तो उन्होंने आंखें भी रद्द की अपनी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ताकि नींद का असर जाहिर हो जाए चला जाए। उसके बाद अल्लाह के रसूल से उन्होंने क्या किया, बगैर वुज़ू के, अभी आपने वुज़ू नहीं किया बल्कि पहले ही आपने क्या किया, सूरह आले इमरान की जो आखिरी आयतें पढ़ते हैं इन्ना फी खल्क़िस समावाति, वो आपने आयतें पढ़ी, उसके बाद आपने वुज़ू किया खड़े खड़े, इससे पता चलता है कि खड़े खड़े भी वुजू करना जायज है, और फिर आपने उसके बाद नमाज पढ़ी, और फिर यहाँ पर वही नमाज का तरीका जैसे कि हम जानते हैं कि अल्लाह के रसूल 11 रकात या फिर आठ रकात करते थे और तीन रकात वितर पढ़ा करते थे। अप्रोक्सीमेटली हमेशा का ज्यादातर आपका जो अंदाज था पढ़ने का 11 रकात का था। अदरवाइज आपने उससे ज्यादा भी पढ़ी या जो है कभी उससे दो रकात कम भी करनी, लेकिन 11 का हमको ज्यादा जिक्र मिलता है। पर इमाम बुखारी साबित करना चाहते हैं कि बगैर वजू के कुरान पढ़ा जा सकता। अब हमारे पर सर बहुत इख्तलाफ है, ऐसा तो आप कहीं कह नहीं सकते पहले बताओ। और जो स्कॉलर्स इसके ऊपर किताबें लिखी हैं तो उसमें भी स्कॉलर्स का इख्तलाफ है अलग अलग, लेकिन वही कि अगर आपको जो लगता है आपके दिल को, और मुझे लगता है कि जहाँ आसानी हो वहाँ आसानी ले लेनी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर भी बहुत दफा सवाल आता है, जैसे जो तालिबान कुरान कोर्स कर रहे हैं, जो हिफ्ज करते हैं, ये जिनका दिन रात का काम है कुरान पढ़ाना हो या कुरान जो सीखने के लिए जाते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं, अब इसके हर एक के लिए पॉसिबल नहीं कि हर बार वजू करें, क्योंकि हिफ्ज करने के लिए बार बार कुरान लेकर बैठना पड़ता है। आपको तस्वीर अगर आप सुनकर लिख रहे हैं तो उसके लिए भी बार बार कुरान लेकर बैठना पड़ता है। और जैसे जब अगर आप इस फील्ड में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं तो आप कितनी दफा जाएंगे कितनी दफा वजू करेंगे। और यहाँ पर कुछ ये नहीं कहा गया, वादे नहीं किया गया कि आप हाथ में मुसहफ लेकर पढ़ सकते हैं या जुबान, इस जिक्र इमाम बुखारी ने बात ही बात है, क्योंकि उस जमाने में मुसहफ था ही और कुरान किसका नाजिल हो रहा था खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अब्दुल्लाह बिन अब्बास क्योंकि खुद इस हदीस से ये मसला ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद बताया कि आपने वजू से पहले आपने कुरान की आयत पढ़ी, तो उस जमाने में तो मुसहफ किसी के भी पास नहीं था। वो लोग क्या करते थे, ज्यादातर आयतें हिफ्ज कर लिया करते थे, जितनी जितनी आयतें नाज़िल होती थी वो लोग हिफ्ज कर लेते थे। तो अभी यहाँ पर वो बहस नहीं हो रही कि आपके हाथ में मुसहफ है या नहीं है, या आपके हाथ में कुरान का कोई एक पारा है या नहीं है। अभी बात में क्या हो रही है, सिर्फ पढ़ने की। तो इससे ये नतीजा फंस के रखा जा सकता है कि अगर आपको बार बार इस तरह करना पड़ रहा है तो आप बगैर वजू के कुरान पढ़ सकते हैं। आसानी की बात आती है कि मुस्तहब और पसंदीदा तो क्या होगा कि आप वजू करके कुरान पढ़ें, लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन है कि आपको बार बार पढ़ना पड़ रहा है या आपको बार बार वजू करने से फिर तकलीफ हो रही है, बहुत सर्दी के दिन है, तो उस तरह फिर आपको बार बार कुरान निकालना भी पड़े। बार बार ऐसा होता है कि कितने मसले देखने के लिए आपको कोई आयत ढूंढने के लिए कुरान उससे उठाना पड़ता है, फिर आप रख देते हैं कुछ थोड़ी देर जाकर फिर आते हैं। कितने लोग आपसे पूछते हैं कि अच्छा वो फिलहाल आयत कहाँ है कुरान में, हमको बताओ। अब जैसे आपको ढूंढना पड़ेगा, तो जाकर आप वजू करेंगे कुरान की आयत ढूंढेंगे, तो उस सूरत में आप क्या कर सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं बगैर वजू के भी, क्योंकि कहीं पर जो कुरान पढ़ने के लिए वजू शर्त नहीं पाया गया, कहीं पर भी शर्त का हमको जिक्र नहीं मिलता है, कोई हदीस हमको नहीं मिलती है जिसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया हो कि कुरान पढ़ने के लिए वजू शर्त है। तो मुस्तहब और पसंदीदा क्या है, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि आप बगैर वजू के जब चाहे पढ़ लें, नहीं, मुस्तहब और पसंदीदा ये है कि आप वजू करके कुरान पढ़ेंगे। ये कुरान के एहतराम या जो भी आप कहें कि जो कुरान के आदाब जो हम पढ़ने के आदाब का तिलावत किया, तो उसमें तो यही आएगा कि आपको वजू करना चाहिए, ठीक है, लेकिन आप उसको वाजिब नहीं करार दे सकते। नहीं, उसको मुस्तहब कहा गया ना कि वजू करके कुरान पढ़ा जाए, उसके लिए कुछ सहाबा कराम थे जो इस तरह से करते थे, और उनके पास भी कुछ थोड़ी बहुत दलीलें हैं, इंशाल्लाह वो आगे धीरे धीरे देखेंगे। लेकिन यहाँ पर तो इमाम बुखारी ने खासतौर से बाप की बात है कि बगैर वजू के भी कुरान पढ़ा जा सकते हैं, तो इसीलिए इस बाप से जो खुलासा निकला वो खुलासा ये निकला कि बगैर वजू के आप कुरान पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर क्या है और मुस्तहब क्या है, वजू करना। मुस्तहब की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था, नहीं इसे पसंदीदा नहीं पढ़ा था जी, करने पर सवाब है और ना करने पर कोई गुनाह, ठीक है। तो पूरी बात हमको समझ में आना चाहिए कि अगर हम वजू करके पढ़ते तो हो सकता है अजर ज्यादा मिले, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर साबित करना क्या है, इमाम बुखारी के लिए ये हदीस लाए हैं कि बगैर वजू के भी कुरान पढ़ा जा सकता है, और इमाम मालिक का फतवा है वैसे। बाकी आपको दूसरे तमाम स्कॉलर्स के बारे में, जैसे बाकी तीनों जो स्कूल ऑफ थॉट है, वो कहते हैं कि वजू करके पढ़ना चाहिए, यानी अगर आप मुसहफ को हाथ में ले रहे हैं या आपको मुसहफ टच, आप मुसहफ को टच करें, लेकिन इमाम मालिक कहते हैं कि जो पढ़ने पढ़ाने वाले हैं उनका फतवा है इसमें कि आप जो पढ़ने पढ़ाने वाले हैं वो बगैर वजू के भी ले सकते हैं। जी उसमें तो कोई डाउट ही नहीं,
लेकिन अगर आप देख के पढ़ रहे हैं कुरान तो खूबसूरत से नहीं पढ़ते।
हाँ, तो वही ना, यहाँ पर इमाम बुखारी ने बाब में जो लाए हैं तो इस वजह से तो ये लाए हैं ना
कि तो पढ़ते रहते हैं
जी, क्योंकि जो अगर हम बचपन में बच्चों को पढ़ाते तो उनको तो उनको सर नहीं आता, हर बच्चा थोड़ी वजू करके आता है जब कुरान पढ़ता है, तो फिर वो कैसे पढ़ता है। इसी बिना पर यहाँ पर एक जवाब निकलता है कि अगर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं बगैर वजू के, लेकिन वही वाली बात है कि मुस्तहब क्या है, वजू करके पढ़ा जाए। हालात जनाबत को मना किया जाता है, लेकिन कुछ स्कॉलर्स तो ये कहते हैं, वो आयशा रज़ी को जुमला लाते हैं कि आप तो हर हाल में जिक्र करते थे, तो वो लोग तो उसके भी कायल हैं, लेकिन अगर हम समझ लेंगे कि हालात जनाबत जो थी वो हमारे हाथ में हमारे इख्तियार में होती है, तो लिहाजा हालात जनाबत थोड़ी देर का वक्त हो सकता है, गुस्ल कर ले तो आप पाक हो जाएंगे, लेकिन हालत है कि तो आपके इख्तियार में नहीं है ना, 3 दिन 4 दिन 5 दिन कितने भी हो सकते हैं, तो लिहाजा इतने दिन तक कुरान से कैसे दूर रहेंगे। इसीलिए लाया गया कि बगैर वजू के कुरान पढ़ा जा सकता है। अगर आप कुछ लिखना चाहें तो लिख लें। इसमें इमाम बुखारी इस बात को यहाँ से लाए हैं कि बगैर वजू के तिलावत कुरान जायज है, बगैर वजू के तिलावत कुरान जायज है। फिर दूसरी बात ये पता चलती है कि आप सलाम का मामूल था कि जब आप तहज्जुद के लिए जाते तो अपनी आंखों को मलते, उसके बाद सूरह आले इमरान की आयत 10 आयत पढ़ते, फिर वजू करके तहज्जुद पढ़ा करते, फिर वित्र पढ़कर आप लेट जाते, फिर जब मौज़िन फजर की अजान देते उसके बाद उठकर आप 2 रकात पढ़ते, 2 रकात पढ़ने के बाद फिर आपके लेटने का जिक्र मिलता है। और मामूली रकात पढ़ने से ज्यादा यहाँ पर हल्की नमाज है, जैसे कि हमको मालूम पता चलता है मौज़िन अजान, मौज़िन के अजान देने पर फिर आप 2 रकात पढ़ते जो 2 सुन्नत है फजर की, फिर उसके बाद थोड़ी देर लेटते, फिर फजर की नमाज के लिए जाते। तो मुस्तहब ये हुआ कि अगर आप कुरान पढ़ेंगे तो बावजू अगर होकर पढ़ेंगे तो मुस्ताह पसंदीदा है, लेकिन अगर आप बगैर मुस्किन भी अगर आप कुरान पढ़ रहे हैं तो ये जायज है। ठीक है, अगली हदीस देखिए। इस बारे में कि बाज़ उलमा के नजदीक सिर्फ बेहोशी की शदीद दौरे ही से वजू टूटता है, मामूली बेहोशी से वजू नहीं टूटता। तो ये दूसरा आप नवाफल से वजू, ये वाली हदीस पर भी देखिए नवाफल से वजू। हमसे इस्माइल ने बयान किया, कहा मुझसे मालिक ने हिशाम बिन उरवा के वास्ते से नकल किया, वो अपनी बीवी फातिमा से वो अपनी दादी अस्मा बिन अबी बकर से रिवायत करती हैं। वो कहते कि मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ौजे मुहतरमा आयशा के पास ऐसे वक्त आई जबकि सूरज को गहन लग रहा था और लोग खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। क्या देखती हूँ कि वो भी खड़े होकर नमाज पढ़ रही हैं। मैंने कहा कि लोगों को क्या हो गया है, तो उन्होंने अपने हाथ से आसमान की तरफ इशारा करके कहा सुभानअल्लाह। मैंने कहा क्या ये कोई खास निशानी है, तो उन्होंने इशारे से कहा कि हाँ, तो मैं भी आपके साथ नमाज के लिए खड़ी होगी। इसी हदीस को सेम इमाम बुखारी आगे नमाज के बाद में लाए हैं और फिर उन्होंने वहां पर जो है दलील से साबित किया कि नमाज में आप कितना इशारा कर सकते हैं, कितना आगे पीछे चल सकते हैं, कितना बात कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि हाँ, तो उन्होंने कहा कि हाँ, तो मैं भी आपके साथ नमाज के लिए खड़ी हो गई। आपने इतना कयाम फरमाया कि मुझ पर गशी डालने लगी और मैं अपने सर पर पानी डालने लगी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो आपने अल्लाह की हुज़ूर सल्लम बयान किया, फरमाया आज कोई चीज ऐसी नहीं रही जिसको मैंने अपनी जगह से अपनी उसी जगह ना देख लिया हो, हत्ता कि जन्नत और दोज़ख को भी देख लिया। और मुझ पर ये वही की गई कि तुम लोगों को खबरों में आजमाया जाएगा, अल्लाह ताला हमको महफूज रखे। दज्जाल जिसकी आजमाइश है उसके करीब करीब। रावी का बयान है कि मैं नहीं जानती कि अस्मा ने कौन सा लफ्ज कहा। तुम्हें से हर एक के पास अल्लाह की फरिश्ते भेजे जाएंगे और उससे कहा जाएगा कि तुम्हारा उस शख्स यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या ख्याल है। फिर अस्मा ने लफ्ज ईमानदार कहा या यकीन रखने वाले कहा मुझे याद नहीं। बहरहाल वो शख्स कहेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और हमारे पास निशानियां हिदायत की रोशनी लेकर आए, हमने उसे कबूल किया, ईमान लाए और आपकी इत्तेबा की। फिर उसे कह दिया जाएगा कि तू सो जाता रहा, हालांकि तू मर्द सोले है और हम जानते थे कि तू मोमिन है और बहरहाल मुनाफिक के शक्की आदमी। अस्मा ने कौन सा लफ्ज़ कहा मुझे याद नहीं। जब उससे पूछा जाएगा कहेगा मैं कुछ नहीं जानता, मैंने लोगों को जो कहते सुना वही मैंने भी कह दिया। यानी जो मुनाफिक के शक्की होगा जिसको अल्लाह पर यकीन होगा, जब उससे सवाल किया जाएगा तो वो ना अल्लाह के रसूल को पहचानेगा ना सही सवाल के जवाब देगा। अब यहाँ पर इस तवील हदीस को इमाम बुखारी के लाने का मकसद ये है कि वो कहते हैं कि मामूली गशी से वजू नहीं टूटता, क्योंकि अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा क्या कह रही है कि उनको गशी आने लगी थी। और एक और हदीस से ये भी साबित है कि उन्होंने बाजू ही घड़े में पानी रखा हुआ था, तो नमाज के दौरान ही उन्होंने वो पानी लेकर अपने सर पर भी डाला। ठीक है, तो ये उन्होंने इतना अमल भी कर लिया कि उनको गशी के दौरे तो आ रहे थे लेकिन उससे बेहोश नहीं हो गई थी। इससे पता चलता है कि जब तक इंसान पूरी तरह से बेहोश ना हो जाए तब तक भी वजू नहीं टूटेगा, यानी मामूली गशी से या मामूली झपकी आने से वजू नहीं टूटता। तो दूसरा नवाफा से वजू क्या हो गया, पूरी तरह गशी आने से या पूरी तरह नींद लग जाने से क्या होगा, वजू टूट जाएगा। नींद ऐसे जैसे कि लेट कर लग जाए, जैसे हम आगे भी पढ़ेंगे, वही बगैर टेक लगाए और खड़े खड़े ऐसे झपकी आने लगे या बैठे बैठे बगैर टेक लगाए झपकी आने लगे, उस सूरत में वजू नहीं टूटेगा। लेकिन जब अगर आप टेक लगा लें या लेट जाए और तब नींद लग जाए उस सूरत में वजू टूट जाए। ठीक है, इससे दूसरा नवाफा जरूर क्या हो, पूरी तरह बेहोश हो जाने से या पूरी तरह से लेट कर नींद लग जाने से वजू टूट जाता है। वो इंशाल्लाह हम नमाज के बाद में पढ़ेंगे, वहां डिटेल आएगी कि नमाज में आप कितना चल फिर सकते हैं, कितना इशारा कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ इसको इस बाब के लिहाज से समझ लीजिए कि इस बाब में इसलिए लाएंगे इमाम बुखारी कि हाँ नवाफा से वजू करेंगे कि इन चीजों से वजू टूट जाता है। तो इससे पता चला कि बेहोशी से जब पूरी तरह से बेहोशी है तो वजू टूट जाएगा, लेकिन अगर हल्की सी गशी तारी हुई जैसे कि इनको हो रही थी तो उस सूरत में वुजू नहीं, क्योंकि बाद सूरत आप लंबी नमाज पढ़े, जैसे कल अल्हम्दुलिल्लाह आप देखोगे कि मस्जिदों में सूरतुल कसूर हुई, बहुत लंबी तो नहीं हुई, मुझे लगता है शायद पौन घंटा या एक घंटा थी, यानी मगरिब की 6:45 शुरू हुई थी और 7:45 तक तकरीबन चलती रही, जी 7:45 खत्म हुई, तो एक घंटा ही तकरीबन 50 मिनट की नमाज थी। तो अब अगर इससे थोड़ी ज्यादा होगी तो हो सकता है कुछ लोगों को खड़े खड़े मशी आने लगे, जो लोग कमजोर होते हैं जिनको नींद ज्यादा आती है तो उस वक्त उनको खड़े खड़े आ सकती है, लेकिन अगर ऐसी सूरत में थोड़ा सा हल्की झपकी लग रही है या इंसान थोड़ा सा एक तरह से सुस्त हो रहा है तो उस वक्त उसको वजू नहीं छूटेगा, नमाज हो जाएगी। इस बारे में भी पूरे सर का मसला करना जरूरी है, ये हदीस पाकर से हम सब के लिए है। जो भी जैसे हम लोगों ने लास्ट ईयर ही जब ये अकोला में हुआ था, सही बुखारी का चल रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे जब मैं छुट्टी गई तो मुझे आम की बात कहा कि सही में बाजी हमने जब हदीस पढ़ी तो हमको यकीन आ गया, वरना उससे पहले तो हमको बिल्कुल यकीन नहीं था, हम एक चौथाई सर का ही मसला करते थे, लेकिन जब दलील से देख ली बात तो जब समझ में आ गया। तो अल्लाह तआला का इरशाद है कि अपने सरों का मसला करो, हम कहो फिर रूसिकुम, ठीक है हम ये पढ़ते हैं। और इब्ने मुसय्यिब ने कहा कि सर का मसला करने में औरत मर्द की तरह है, वो भी अपने सर का मसला करे। इमाम मालिक से पूछा गया कि क्या कुछ हिस्सा सर का मसला करना काफी है, तो उन्होंने दलील में अब्दुल्ला बिन जैद की हदीस पेश की, मेरे सर का मसला करना चाहिए। हदीस है हमसे अब्दुल्ला बिन यूसुफ ने बयान किया, उन्होंने कहा हमको इमाम मालिक ने अम्र बिन यहिया अल-मादनी से खबर दी, वो अपने वालिद से नकल करते हैं कि एक आदमी ने अब्दुल्ला बिन जैद रज़ियल्लाहु अन्हु जो अम्र बिन यहिया के दादा हैं से पूछा कि क्या आप मुझे दिखा सकते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह वुज़ू किया है। अब्दुल्ला बिन जैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हाँ, फिर उन्होंने पानी का बर्तन मंगवाया, पहले पानी अपने हाथों पर डाला और 2 मरतबा धोए, फिर 3 मरतबा कुल्ली की, 3 बार नाक साफ की, फिर 3 दफा अपना चेहरा धोया, फिर कोहनियों तक अपने दोनों हाथ 2-2 मरतबा धोए, फिर अपने दोनों हाथों से अपने सर का मसा किया, इस तरह इस तौर पर अपने हाथ पहले आगे लाए फिर पीछे ले गए, मसा सर के इब्तदाई हिस्से से शुरू किया, फिर दोनों हाथ गुद्दी तक लेकर ले जाकर वहीं वापस आए जहां से मसा शुरू किया, फिर अपने पैर धोए। अब देखिए शरीर से वाजे हो गए, पहले तो कुरान की आयत है कि अपने सरों का मसा करो, इसमें अपने सरों का मसा करने का जिक्र है, तो इससे क्या बात पता चली कि सर का मसा करना है, कहीं पर हमको लग रहा है कि अल्लाह तआला ने अपने आधे सर का मसा करना, नहीं, जब सर का बात रही तो उसमें जो बात समझी जाएगी एक नॉर्मल वो क्या समझी जाएगी, पूरा सर आ गया। फिर दूसरा जब यहाँ पर जब पूछा गया कि उसकी दलील, तो यह हदीस दलील के तौर पर आ गई, तो जो अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु जो अंसारी है वो कहते हैं कि जब उनसे पूछा गया कि आप अल्लाह के रसूल का वुज़ू का तरीका बता सकते हैं, तो उन्होंने खासतौर से मसा का तरीका बताया कि मसा कैसे किया था, इस तरह के इब्तदाई हिस्सा, तो सर का इब्तदाई हिस्सा कहाँ से होता है, यहाँ से पेशानी से होता है, पेशानी से जाएंगे तो फिर कहाँ तक गए, वो गुद्दी तक गए, फिर गुद्दी से क्या किया वापस आए, और इसमें उन्होंने कहा कि मर्द और औरतों के मसा में कोई फर्क नहीं है, वैसे भी ना वुज़ू में फर्क है ना नमाज में फर्क है, हम सब जानते कोई हदीस से साबित नहीं है। तो बहरहाल यहाँ पर उन्होंने खासतौर से यह हदीस सर के मसा के लिए, हालांकि हमने पीछे उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की या हमरान रज़ी अल्लाह अन्हु की वो हदीस हमने देखी जिसमें वुज़ू का दूसरा तरीका बताया गया कि जिसमें वुज़ू आपने कैसे किया, उसमें सर के मसा का इतना वाज़ह तौर पर नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस हदीस में क्या है, सर के मसा का पूरा तरीका बताया गया, तो कैसे होगा फिर सर का मसा, जैसे कि अगर आपकी चोटी है तो आपको चोटी उठा के वापस ही लाने, आप यहाँ तक ले जाएं और यहाँ से वापस ला लें, चोटी को वापस लाने की जरूरत नहीं आपको, क्योंकि औरतों के बाल अगर बड़े होते हैं, लेकिन मर्द तो क्या करेंगे, तो बालों को इस तरह से उठा के पीछे लाएंगे, बस यहाँ से गए ऐसा, और यहाँ से पीछे गुद्दी तक लेके गुद्दी से वापस ला लें, जी हाथ वापस आएंगे, बाल नहीं वापस आएंगे, गुद्दी तक टच होना जरूरी है, जी हाँ बालों को टच होना जरूरी है, वापसी में हल्का हल्का हाथ देकर आप ऐसे वापस आ
जाए,
इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे हदीस में कि अगर आप जो है अगर आप अंदर कहीं पर हैं तो आप अपने सर का मसा वैसे आपको उतार के करना पड़ेगा, बालों को टच करना जरूरी है, लेकिन आप अगर ऐसी जगह पर है जहाँ पर आपको अगर सर से कवर निकालेंगे तो बेपर्दगी होने का खतरा, बालों का इससे करना पड़ता है ना, मजबूरी होती है, सफर में है आप ये कहीं इस तरह से है तो उस तरह में उस पर से भी मसा हो जाएगा, क्योंकि पगड़ी पर आपने मसा किया था तो उससे दलील लाई गई है कि अगर आप सफर में हो तो कोई ऐसी चीज बांधे हुए हो कि जिससे नहीं हो सकता, लेकिन इसके बारे में दूसरी भी राय है वो भी हम देखेंगे जब इंशाल्लाह आगे पहुंचेंगे। तो यहाँ तो क्या पता चल रहा है कि तमाम इमाम बुखारी इमाम मालिक तमाम जो जमहूर उलमा का मसलक है कि पूरे सर का मसा करना जरूरी है, लिखने आपको इमाम मालिक और इमाम बुखारी और जमहूर उलमा का मसलक है कि पूरे सर का मसा करना जरूरी है। पहले कुरान की आयत से हमें दलील मिलती है कि अल्लाह ताला ने सर सर का मसा करने के लिए कहा है, उसमें कोई कैद नहीं रखी कि आधे सर का मसा किया जाए पूरे सर कौन सर का है। जम्हूर उलमा का हाँ फतवा ये मसला कह दें पूरे सर का मसा किया जाए, और अगर सर पर अमामा हो तो उस सूरत में भी पेशानी से मसा किया जाएगा। हाँ जो इस तरह से वो गोल करके लपेटते थे ना पहले जमाने में बांधा जाता, उस सूरत में पेशानी से अमामे पर पीछे तक हाथ लिया जाएगा या हाथ ले जाया जाएगा और पीछे से वापस सामने लाया जाएगा। जी पेशानी से फिर अमामे पर हाथ ले जाया जाएगा और फिर पीछे से वापस लाया जाएगा। दो हदीसें और देख लेते हैं इंशाल्लाह उनके पूरे सवाल जवाब कर देंगे। हमसे मूसा ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे वहब ने बयान किया, उन्हें अमर से उन्होंने वालिद यहीए से खबर थी, उन्होंने कहा कि मेरी मौजूदगी में अमर बिन हसन ने अब्दुल्ला बिन ज़ैद से रसूल अकरम के वुज़ू के बारे में पूछा, तो उन्होंने पानी का तश्त मंगवाया और उन्हें पूछने वालों से अल्लाह के रसूल का सब वुज़ू किया, पहले तश्त से अपने हाथों पर पानी गिराया, फिर तीन बार हाथ धोए, फिर अपना हाथ तश्त में डाला और पानी लिया, फिर कुल्ली नाक में पानी डाला, नाक साफ की तीन चुल्लुओं से, फिर अपना हाथ तश्त में डाला और तीन मरतबा मुंह धोया, फिर अपने हाथ कोहनियों तक दो बार धोए, फिर अपना हाथ तश्त में डाला और सत्तर मरतबा किया, पहले आगे लाए फिर पीछे ले गए एक बार, फिर टखनों तक अपने दोनों पांव धोए। अब इसमें जो इस बारे में कि टखनों तक पांव धोना जरूरी है, यानी जो उनवान था टखनों तक पांव धोना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे पीछे भी हमने पढ़ा कि कुछ लोग कुछ मसलक वाले जो पैरों का धोना जरूरी नहीं समझते या जो पैरों को सामने से पानी डाल देते हैं, तो यहाँ पर ये साबित करना चाह रहे हैं कि पैरों को टखनों तक धोना जरूरी है। टखने किसको कहते हैं, जो हमारे जो साइड में जो हमारा उभरा हुआ हिस्सा होता है, ठीक है ना, तो टखनों तक धोना जरूरी है, थोड़ा ऊपर तक धोना जरूरी है। बताना मतलब ये कि आप जो सिर्फ सामने पंजों पर पानी डाल रहे हैं नीचे पानी डाल रहे हैं, बस क्या आप क्या करेंगे थोड़ा सा ऊपर तक जो है आप पैरों को धोएंगे। और फिर यहाँ दोबारा फिर उन्होंने जो है यहाँ पर मसा का भी जिक्र है, और एक और बात यहाँ पर पता चलती है कि वो उसमें बाल बकत उन्होंने तश्त को उल्टा और बाल बकत तश्त में ही हाथ डाला, इसके वजू के पानी में हाथ डाला जा सकता है, डाला जा सकता है। जैसे हमारे ऊपर क्या होता है कि जिस पानी में हाथ डाले वो पानी से वजू नहीं करेंगे, तो अगली हदीस उसी के लिए है, लोगों के वजू का बचा हुआ पानी इस्तेमाल करें। जैसे लाख शरीफ इसने सवाल किया था, जरीर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु ने अपने घर वालों को हुक्म दिया था कि वो उनके मिसवाक के बचे हुए पानी से वजू कर लें, ठीक है, जिस पानी में मिसवाक भिगोई थी बस उन्होंने कहा कि तुम उससे वजू कर लो। असल में यहाँ बताना मकसद क्या है, यहाँ पर जरीर बिन अब्दुल्ला का यहाँ पर एक अमल लाया गया है, इनका कौल लाया गया है, और इमाम बुखारी अपनी बात को साबित करने के लिए सहाबा के कौल या ताबीन के कौल लाते हैं। एक्चुअली यहाँ वो बताना ये चाह रहे हैं कि मिसवाक जिस पानी में डूबी रहती है उस पानी को नापाक नहीं कह सकते। हमारे ऊपर दरअसल है कोई पानी में कोई चीज चली जाए तो क्या कहते हैं ये वजू के लिए सही नहीं नापाक है। हमसे आदम ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे शोभा ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे हकम ने बयान किया, उन्होंने अबू जुहैब पर रज़ी अल्लाह अन्हु सुना, कहते थे कि एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास दोपहर के वक्त तशरीफ लाए तो आपके लिए वुजू का पानी हाजिर किया गया जिससे आपने वुजू फरमाया, लोग आपके वुजू का बचा हुआ पानी लेकर उसे अपने बदन पर फेरने लगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर की दो रकातें अदा की और असर की भी दो रकातें, और आपके सामने आड़ के लिए एक मेज़ा था। अब यहाँ पर पता चल रहा है अगली हदीस भी देख लीजिए फिर इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। और दूसरी हदीस अबू मूसा शरीफ कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्याला मंगवाया जिसमें पानी था, उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ धोए और उसी प्याले में मुंह धोया और उसी में कुल्ली फरमाई, फिर फरमाया तुम लोग इसको पी लो और अपने चेहरों और सीनों पर डाल दो। तब यहाँ पर ये दोनों हदीस को सामने लाकर पता चलता है कि इससे मालूम है कि इंसान का जो छोटा पानी होता है वो नापाक है, जो हम लोग एक दूसरे के मुँह का पानी भी पीना गवारा नहीं करते ना, तो यहाँ पर पता चल रहा है कि आपने कुल्ली की। एक्चुअली यहाँ पर साबित रहा अल्लाह के रसूल को बरकत के लिए करते थे, तो इससे ये साबित करना मुमकिन है किसी ने किसी पानी में हाथ डाला और जो वुजू का पानी है जो बचा हुआ पानी है तो वो वुजू के बचे हुए पानी से आप जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, दोबारा वुजू के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपने कुल्ली की जो कुल्ली थी आपने उसका पानी जो है उनको पीने का हुक्म दिया, इस्तेमाल में जो पानी पाक था, लेकिन चूंकि अल्लाह के रसूल के पानी का हम दूसरों पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब ये कर सकते हैं नहीं कि जैसे हम सब जानते हैं जैसे इससे पता चला था ना कि जब किसी को नजर लग जाती है तो नजर लग जाती है तो उसके गुस्ल का पानी जिसकी नजर लगी है उसका पानी जो है उस पर डाला जाए, ठीक है। तो अब उसमें जो है स्कॉलर का जो ओपिनियन सामने आता है वो ये है कि कुल्ली नहीं की जाए, या कोई उसमें ये था कि जो है कुल्ली और नाक में पानी डाला जाएगा बाकी सब तरह से वुजू किया जाएगा और वो पानी जिस तरह से उसको नहलाया जाएगा। इससे पता चलता है कि आम लोगों के लिए जो है किसी का कुल्ली की और पानी अगर आपको कराहत आ रही हो तो वो आपको पीना जरूरी नहीं है, लेकिन एक्चुअली वो पानी होगा तो पाकी अगर आप उससे वुजू करना चाहें तो कर सकते हैं। और अल्लाह के रसूल का जो लावे रहन था या फिर आपके मुंह का पानी था तो सहाबा किराम बरकत के लिए मरते थे, लेकिन आज के दौर में हम उसको वजह बनाकर जवाब बनाकर आज के दौर के जो उलमा है या जो बुजुर्ग है उनका पानी और उनका लुआब दहन हम बरकत के लिए नहीं दे सकते। ठीक है, वो बरकत किसके लिए खास थी? सिर्फ खुद अल्लाह के रसूल के लिए। लेकिन एक्चुअली यहाँ बताना हमको ये कि किसी इंसान का जो छोटा पानी होता है, किसी का पिया हुआ, किसी का इस्तेमाल किया हुआ, वो नापाक नहीं होता है। आप किसी किसी ने पानी पी के रखा और आप चाहे तो उस पानी को पी सकते हैं, वो नापाक नहीं होगा। ठीक है, और वुजू करने के लिए तो बिल्कुल भी नापाक नहीं होता, वुजू करने के लिए वो पानी जाए। तो ये बात समझ में आई। तो ये दोनों तीनों अहादीस की जैसे समझ में आए कि अगर हमारे पर कोई बकेट रखी हुई है पानी या कोई टैंक है, उसमें किसी ने हाथ डाल दिया और हाथ पर कोई नजाकत नहीं लगी, या उस पानी से आपने कपड़े धोए और उसमें कोई छींटे नहीं गए, तो क्या कर सकते हैं? उस पानी से वुजू कर सकते हैं, वो पानी पाक होगा। ठीक है, और आयशा रजी अल्लाह अन्हा के रसूल भाई मैमूना रजी अल्लाह अन्हा से साबित है कि आप दोनों एक साथ गुस्ल करते थे और एक दूसरे का हाथ टच होता था, वो जो लगन में पानी था एक ही लगन के पानी से गुस्ल करते थे उससे जना पर, लेकिन उसके बावजूद भी वही पानी से वुजू कर लेते, क्योंकि पहले वुजू करते बाद में गुस्ल करते ना, तो और वो पानी से वुजू हो जाता था। इससे पता चलता है कि ऐसा पानी जिसमें नजाकत ना लगी हो वो पानी पाक होता है, नापाक नहीं होता। ये तमाम चीजें थी। अब अगर किसी का कोई सवाल है तो आप लोग करिए। इमाम बुखारी साबित करना चाहते हैं जो उसका खुलासा यहाँ लिखा गया है कि वुजू का बचा जो वुजू का पानी था वो पाक था, सभी लोगों ने इसे पिया, और नापाक उस पानी को कहते हैं जिसका फिर इस्तेमाल ना किया जाए। जब इस्तेमाल किया तो मतलब वो पाक था। अगर आप कोई ऐसे मर्दों के दरमियान में घिरे हुए हों और बेपर्दगी का खतरा, तो उस सूरत में अगर आप इसकाफ का समस्या करेंगे तो ठीक है, लेकिन आप अगर अंदर हो तो उस सूरत में आपको इसकाफ निकाल कर ही मसा करना। जी बिल्कुल, तो नहीं मसा करना नहीं, गर्दन का मसला कहीं पर साबित है। जी हाँ, बस साबित करना वहां तक गर्दन तक हाथ ले जाने आप, नहीं नहीं अंदर उतर जाना, मसा मतलब टच होके गुजर, मसा का मतलब टच करके जाना। एक्चुअली वो इसमें ये दोनों भी जब हम बात गुस्ल पड़ेंगे ना, मसा का जब आगे पड़ेंगे तो उसमें ये करेंगे। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि औरतों के लिए वो है कि उनको मसा करना ही पड़ेगा, औरतों के लिए नहीं, क्योंकि मसा जो है फराइज में से आता है, तो मसा करना जरूरी है। ठीक है, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।